अगर हम सोचें कि किसी को एक बहुत जरूरी जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है और रिज्यूमे बिल्कुल परफेक्ट है, डिग्री, एक्सपीरियंस, सब कुछ टॉप क्लास, लेकिन इंटरव्यूअर उस रिज्यूमे को साइड में रख देता है और सीधा पूछता है कि अपने परदादा के बारे में बताइए,
परदादा का बैकग्राउंड.
हाँ एग्जैक्टली. और अगर उनका बैकग्राउंड सॉलिड नहीं निकला या उनका नाम याद नहीं आया तो जॉब तो दूर की बात, बिल्डिंग से ही बाहर निकाल दिया जाएगा. आज के टाइम पे ये बिल्कुल पागलपन लगता है ना.
पूरा पागलपन लगता है, क्योंकि देखिए आज के समाज में पहचान एक इंडिविजुअल चीज है. हमारी अपनी एक आइडेंटिटी होती है जो हमारे हमारे अपने काम से बनती है.
सही कहा. लेकिन जब हम फर्स्ट सेंचुरी में जाते हैं, यानी प्राचीन काल में, तो वहां इंडिविजुअल अस्तित्व जैसा कुछ था ही नहीं. आज हम डॉक्टर डेविड डिसिल्वा की एक रिसर्च पर डीप डाइव कर रहे हैं, जहां उन्होंने अर्ली न्यू टेस्टमेंट एरा यानी पहली सदी के परिवार और घर के कॉन्सेप्ट को डीकोड किया है.
और ये बहुत ही मतलब डीप टॉपिक है.
बिल्कुल. और सच कहूं तो उस वक्त जिसे हम परिवार मानते थे उसके नियम इतने अलग और अजीब थे कि किसी का भी दिमाग चक्कर खा जाए. हमारे पास जो एंशियंट टेक्स्ट्स हैं उनके किस्से कहानियों का तब तक कोई मतलब नहीं बनता जब तक हम इस एंशियंट सोसाइटी के रूल्स को ना समझ लें.
यही हमारा मेन मिशन भी है इस एनालिसिस में.
तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं. डॉक्टर डिसिल्वा ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है शुरुआत में ही, वंशावली या लिनेज के बारे में.
हाँ, और इसको एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे आज रियल एस्टेट में क्या जरूरी होता है, लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन.
बिल्कुल.
उसी तरह प्राचीन काल में किसी भी व्यक्ति की सोसाइटी में जो लोकेशन या पोजीशन होती थी वो उसकी वंशावली से तय होती थी. इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल एज्रा और नेहमिया के एंशियंट टेक्स्ट में मिलता है.
अच्छा, वहां क्या हुआ था?
देखिए, जब इसराइल के लोग एग्जाइल यानी निर्वासन से वापस आए तो कुछ लोग अपने पूर्वजों का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए. वो लोग ये साबित ही नहीं कर सके कि उनका खून 12 ट्राइब से जुड़ा है.
तो नतीजा क्या निकला?
नतीजा ये हुआ कि उन्हें सिंपली सोसाइटी से और यहाँ तक कि रिलीजियस रिचुअल से बाहर निकाल दिया गया. उनका अपना कोई अस्तित्व बचा ही नहीं.
वेट, रियली? मतलब जीरो इंडिविजुअल क्रेडिट सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्यूमेंट घूम गया या उन्हें अपने पूर्वजों का नाम याद नहीं था?
एकदम जीरो. उस वक्त की दुनिया में व्यक्ति का सम्मान उसके पूर्वजों के सम्मान से ही आता था. वहां कोई पुलिस रिकॉर्ड या बैकग्राउंड चेक सॉफ्टवेयर तो था नहीं.
हाँ वो तो है.
तो एक अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने का एक ही तरीका था, उसके खून की पहचान.
ये ट्रस्ट वाला पॉइंट ना मुझे तोबित की किताब के उस किस्से की याद दिला रहा है जो इन सोर्सेज में मेंशन किया गया था.
टोबियास और एजारिया वाला किस्सा.
हाँ वही. ये तो किसी एंशियंट रोड ट्रिप मूवी जैसा लगता है. तोबित को अपने बेटे टोबियास को एक बहुत लंबी और खतरनाक यात्रा पर भेजना होता है और उसके साथ एक गाइड को भेजना है जिसका नाम अजारिया है. अब कोई नॉर्मल फादर क्या पूछेगा, भाई रास्ता पता है ना,
या फिर तलवार चलानी आती है या नहीं.
एग्जैक्टली. लेकिन टोबित ये सब कुछ नहीं पूछता. वो सीधा पूछता है कि तुम्हारा वंश क्या है. और जैसे ही अजारिया बताता है कि वो हनानिया का बेटा है जो एक अच्छे और नेक परिवार से है, तो टोबित तुरंत बोलता है कि परफेक्ट, तुम हायर हो गए.
और यही उस वक्त का सबसे नॉर्मल बिहेवियर था. अजारिया का जो रेज्यूमे था वो उसकी खुद की स्किल्स नहीं थी बल्कि उसके एंसेस्टर्स थे.
सुनते सुनते मुझे एक बड़ा दिलचस्प ख्याल आया. ये तो बिल्कुल आज के सिबिल स्कोर जैसा हो गया ना. अगर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का सोशल क्रेडिट स्कोर सॉलिड था तो ऑटोमेटिकली उनका पोता होने के नाते आपको ट्रस्ट का लोन मिल जाता था, आप चाहे खुद कितने भी नालायक क्यों ना हो.
ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक है. वंशावली उनका एक तरह से सिबिल स्कोर ही थी. और इसी चश्मे से अगर हम मैथ्यू की इंजील यानी गॉस्पल ऑफ मैथ्यू की शुरुआत को देखें तो एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है.
मैथ्यू की शुरुआत में जो लंबा सा लिस्ट है
आज के 21वीं सदी के रीडर्स जब उसे पढ़ते हैं, जहां 42 पीढ़ियों का लंबा चौड़ा वर्णन दिया गया है कि फलाने का बेटा फलाना, उसका बेटा फलाना, तो लोग अक्सर बोर हो जाते हैं.
मैं खुद वो पेजेस हमेशा स्किप कर देता था. ऐसा लगता था जैसे मतलब नई टीवी के मैनुअल की इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहा हूँ.
लेकिन एक पहली सदी के दिमाग के लिए वही उस पूरी बुक का सबसे थ्रिलिंग और जरूरी हिस्सा था. गॉस्पेल के राइटर को ये बहुत अच्छे से मालूम था कि जीसस की अहमियत स्थापित करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनका सिबिल स्कोर दिखाना.
उन्हें इब्राहिम और किंग डेविड के डायरेक्ट उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत करना है.
बिल्कुल, ताकि लोग उनकी बात सुनने के लिए तैयार तो हो.
और इन्हीं सोर्सेज में इस 42 जनरेशन के पीछे एक और रहस्य बताया गया है, नंबर 14 का खेल. मैं हमेशा सोचता था कि ये नंबर्स अलग अलग टेक्स्ट में मैच क्यों नहीं करते.
क्योंकि वहां न्यूमरोलॉजी चल रही थी.
वही ना, बात ये थी कि हिब्रू भाषा में अल्फाबेट लेटर्स को ही नंबर्स माना जाता था, और डेविड नाम के लेटर्स का टोटल 14 बनता है। तो मैथ्यू ने बेसिकली 14-14 जनरेशंस के 3 सेट बनाए
ताकि वो न्यूमरोलॉजिकली भी कनेक्ट हो जाए।
एग्जैक्टली, जस्ट टू हैमर होम द पॉइंट कि जीसस डेविड के अल्टीमेट वंशज हैं। ये कोई रैंडम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं था, बल्कि एक हाईली क्यूरेटेड पीआर मैसेज था उस काल के हिसाब से।
एकदम सही,
वो प्रैक्टिकली अपने ऑडियंस की भाषा ही बोल रहे थे। पर अब यहां से एक बड़ा इंटरेस्टिंग शिफ्ट आता है। अगर वंश और खून का रिश्ता इतना ही कठोर और जरूरी था, तो क्या सोसाइटी में हम और वो, मतलब उस एंड देम की बाउंड्री हमेशा एक जैसी फिक्स रहती थी?
ऐसा लगता तो है, पर सोर्सेज पढ़ के समझ आया कि ये बाउंड्रीज एक्चुअली बहुत फ्लेक्सिबल थीं।
यहाँ शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का एक बड़ा शानदार रेफरेंस दिया गया था, अ लिटिल मोर देन किन एंड लेस देन काइंड।
हाँ, यहाँ काइंड का मतलब वो अंग्रेजी वाला दयालु नहीं,
यहाँ काइंड का मतलब एक ही मिट्टी एक ही स्टॉक का होना था।
सही कहा। जैसे ग्रीक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जरूरी नहीं कि उनमें आपस में खून का डायरेक्ट रिश्ता हो, लेकिन ग्रीक्स खुद को आपस में एक काइंड का मानते थे।
पर ऐसा क्यों? अगर खून नहीं मिल रहा तो एक काइंड क्यों?
क्योंकि जब आपको खुद को बारबेरियंस यानी बाकी पूरी दुनिया से अलग और सुपीरियर दिखाना हो, तो आपको अपना दायरा थोड़ा बड़ा करना पड़ता है। सेफ्टी इन नंबर्स वाली बात,
राइट? और ये फ्लूइडिटी हालत के हिसाब से सिकुड़ती या फैलती रहती थी। डॉक्टर दे सिल्वा ने डायस्पोरा और जुडेया की जूस का जो एग्जाम्पल दिया है, वो मुझे पर्सनली बहुत रिलेटेबल लगा।
डायस्पोरा यानी वो यहूदी जो इसराइल से बाहर दूसरे देशों में माइनॉरिटी बनकर रह रहे थे।
हाँ, तो वहां जब दो अनजान जूस मिलते थे तो वो एक दूसरे को भाई या परिवार मानते थे। ये वैसा ही है कि आप न्यूयॉर्क या टोक्यो के किसी सबवे में हो और वहां कोई अनजान इंडियन दिख जाए तो आप तुरंत उससे दोस्ती कर लेते हैं।
अरे भाई, आप कहां से हो, वैसा वाला रिएक्शन।
एग्जैक्टली। पर वही लोग जब वापस जुडिया में होते थे, यानी अपने देश में जहां सब अपने ही थे, तब परिवार की डेफिनेशन एकदम नैरो हो जाती थी।
तब पड़ोसी भी बाहरी यानी आउटसाइडर बन जाता था और परिवार सिर्फ अपने क्लोज क्लैन तक सीमित रह जाता था।
हाँ, लेकिन तभी अगर उस गांव से रोम की सेना निकल रही हो, तो अचानक सब गांव वाले फिर से एक परिवार बन जाते थे।
इससे एक बात साफ होती है कि बाहरी खतरा ही अक्सर लोगों को एक करता था। और इस बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो जीसस का आइडिया कितना रेडिकल लगता है।
कैसे?
उस हेटफुल और टेंशन वाले एनवायरनमेंट में जीसस ने अचानक से लोगों का दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया, वो भी बिना किसी इमीडिएट खतरे के। ज़कियस की स्टोरी इसका प्राइम एग्जाम्पल है। ज़कियस एक टैक्स कलेक्टर था,
और टैक्स कलेक्टर्स उस वक्त सबसे बड़े गद्दार माने जाते थे, राइट? क्योंकि वो रोम के ओप्रेसर्स के लिए काम करते थे और अपने ही लोगों से ज्यादा पैसा वसूलते थे।
एकदम सही। सोसाइटी और उसके खुद के कबीले ने उन्हें पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। वो ऑफिशियली एक आउटसाइडर थे, लेकिन जीसस ने उनके घर जाकर खाना खाया और उन्हें वापस अब्राहम का बेटा बुलाया।
और वैसा ही उन्होंने एक बीमार महिला के साथ किया था ना, जिससे सोसाइटी अशुद्ध मानती थी।
हाँ, उन्होंने उसे अब्राहम की बेटी कहकर उस छोटे कबीरी दायरे को इफेक्टिवली तोड़ दिया।
पर वेट, मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है यहाँ पर। अगर ह्यूमन नेचर इतनी ही ट्राइबल रही है कि हम सिर्फ तब एक होते हैं जब कोई बाहरी खतरा हो, तो जीसस का सबको अब्राहम की संतान कहना, ये तो बेसिकली पूरे सोशल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करने जैसी बात थी ना।
ये उनके सोशल रूल्स पर एक सीधा अटैक था, और लोगों को ये कितना चुभा होगा ये समझने के लिए प्रोडिगल सन यानी दो भाइयों की कहानी को देखना होगा,
वो भटके हुए बेटे की घर वापसी वाली कहानी।
हाँ, लोग आज इस कहानी को एक इमोशनल फैमिली स्टोरी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये स्टोरी उन स्ट्रिक्ट रिलीजियस लीडर्स के लिए थी जिन्हें फैरिसीज कहते थे।
फैरिसीज मतलब वो लोग जो रूल्स को लेकर बहुत सख्त थे और खुद को समाज का ठेकेदार मानते थे।
बिल्कुल, फैरिसीज इन टैक्स कलेक्टर्स और बीमार लोगों को पापी और बाहरी मानते थे। उन्हें लगता था कि ऐसे लोग उनके दायरे में आने लायक ही नहीं है।
ओह, तो वो स्टोरी उनके लिए काउंटर आर्ग्यूमेंट थी।
हाँ, जीसस की ये स्टोरी बेसिकली उन फैरिसीज को ये याद दिलाने के लिए थी कि जिन्हें तुम आउटसाइडर समझकर नफरत कर रहे हो, वो दरअसल तुम्हारे ही भाई बहन हैं। ये उनके उस ट्राइबल माइंडसेट पर एक डायरेक्ट चैलेंज था।
माइंड ब्लोइंग। चलो, ये तो समझ आ गया कि परिवार का बॉर्डर डिसाइड कैसे होता था, पर मुझे ये समझना है कि उस बाउंड्री के अंदर, मतलब प्रैक्टिकली लाइफ कैसी थी। आज के टाइम पे हम भाई बहन आपस में कंपटीशन करते हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, उस वक्त के नैतिक नियम या एथिक्स कैसे थे?
इसको समझने के लिए हमें उस एंशिएंट माइंडसेट को समझना होगा जिसे लिमिटेड गुड्स इकोनॉमी कहते हैं।
लिमिटेड गुड्स?
हाँ, ये प्री इंडस्ट्रियल एरा था। आज की तरह मास प्रोडक्शन नहीं था, स्टॉक मार्केट्स नहीं थे जहां वेल्थ लगातार ग्रो करती है। उस दौर में लोग मानते थे कि दुनिया में हर चीज फिक्स्ड और लिमिटेड है, चाहे वो अनाज हो, पैसा हो, या यहां तक कि सोसाइटी में मिलने वाला सम्मान हो।
तो इसका मतलब एक जीरो सम गेम जैसा कुछ। अगर मेरे पास एक स्लाइस पिज्जा एक्स्ट्रा आया है तो टेक्निकली किसी और की प्लेट से एक स्लाइस कम हुआ है।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एक का फायदा सीधे तौर पर किसी दूसरे का नुकसान था। इस वजह से पूरी सोसाइटी एक भयंकर कंपटीशन और टेंशन में रहती थी। लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि इस लिमिटेड गुड्स वाली दुनिया में सर्वाइवल के लिए आपके अपने परिवार के अंदर इस कंपटीशन की सख्त मनाही थी।
मतलब घर के अंदर आप राइवल्स नहीं हो सकते।
बिल्कुल नहीं।
सोर्सेज में एरिस्टोटल का एक हवाला था कि भाई बहन का रिश्ता दोस्ती की एब्सोल्यूट हाईएस्ट फॉर्म होती थी।
सिबलिंग राइवलरी उस दौर में कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल थी।
वहाँ कैडमियन विक्ट्री का कॉन्सेप्ट बड़ा हिट था।
ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से ऑडिपस के दो बेटों ने एक दूसरे के खिलाफ थ्रोन के लिए युद्ध किया और उस लड़ाई में दोनों मरे गए। ऐसी जीत का आखिर फायदा ही क्या?
वही ना, अपने ही भाई को हराकर जीतना सबसे शेमफुल माना जाता था उस प्राचीन काल में। आप अपने दुश्मन को हराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अपने घर के अंदर किसी को हराकर आप आगे नहीं बढ़ सकते।
और इसी पॉइंट से जुड़ा है उनका एक और अजीब नैतिक नियम, भ्रम और धोखा, यानी डिसीट।
ये वाला पॉइंट तो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा वाइल्ड लगा। जूडिथ की किताब में एक स्टोरी है जहां जूडिथ अपने गांव को बचाने के लिए दुश्मन की सेना के जनरल होलोफर्नस के कैंप में जाती है। वो उसके सामने लगातार झूठ बोलती है, धोखा देती है, और इस बात के लिए पूरी सोसाइटी उसकी प्रशंसा करती है।
हीरो वाले बात थी उस टाइम।
हाँ, आज हम बच्चों को सिखाते हैं कि झूठ बोलना पाप है, पर उस टाइम पे दुश्मन से झूठ बोलना गर्व की बात थी,
क्योंकि वहां मोरालिटी यानी नैतिकता रिलेटिव थी। सच बोलना कोई यूनिवर्सल रूल नहीं था। दुश्मन एक बाहरी था और आउटसाइडर को धोखा देकर अपने ग्रुप को फायदा पहुंचाना अच्छी बात थी। लेकिन अगर यही धोखा या एक छोटा सा झूठ परिवार के किसी सदस्य के साथ बोला गया
तो वो कम्प्लीटली अनफॉर्गिवेबल था।
हाँ, वो घोर अपमानजनक माना जाता था। अपनों के बीच ट्रस्ट और यूनिटी ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थी। अगर वहां धोखा हुआ तो पूरा परिवार कोलैप्स हो जाएगा।
आई सी, ठीक है। अब इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की थ्योरी से निकलकर सीधे एक एक्चुअल घर, जिसे ग्रीक में ओइकोस कहते थे, उसके अंदर चलते हैं। डॉक्टर दे सिल्वा का जो ब्रेकडाउन है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट से इतना अलग है कि सच में शॉक लगता है। आज एक घर क्या है? एक ऐसी जगह जहां हम ऑफिस से थक कर आते हैं, सोफा पर बैठते हैं और आराम करते हैं।
कंज्यूमर बेस है आज का घर।
पर फर्स्ट सेंचुरी में सीन अलग था।
फर्स्ट सेंचुरी का घर उपभोग करने की जगह नहीं बल्कि उत्पादन यानी प्रोडक्शन की एक यूनिट था। एरिस्टोटल ने एक एंशियंट घर का मॉडल बताया था जिसके सेंटर में एक ही मर्द होता था,
मुखिया।
हाँ, और वो अकेला मर्द एक साथ पति, पिता और मालिक तीनों भूमिकाएं निभाता था और पूरा घर बिल्कुल एक मिनी फैक्ट्री की तरह चलता था।
वही, एक फैमिली रन कॉरपोरेशन की तरह, जैसे किसी अमीर रोमन सेनेटर का एस्टेट ले लीजिए जहां हजारों गुलाम खेती करते थे, या फिर जीसस का अपना छोटा सा घर देख लीजिए। हम हमेशा उन्हें बढ़ई का बेटा या कारपेंटर की तरह सोचते हैं, पर बेसिकली उनका घर एक छोटा बिजनेस था।
बिल्कुल, जोसेफ और जीसस मिलकर वुडवर्क करते होंगे और उस टाइम के रूल्स के हिसाब से महिलाएं भी पीछे नहीं होंगी। वो उस बिजनेस को चलाने, सप्लाई चेन देखने या हिसाब किताब संभालने में लगातार काम कर रही होंगी।
इसका सबसे सॉलिड आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मगदला नाम के एंशियंट शहर में मिला है ना?
हाँ, मगदला एक मछली पकड़ने वाली कम्युनिटी थी। वहां जब एक्सकेवेशंस हुए तो घरों के बिल्कुल अंदर वाले हिस्सों में मछली सुखाने और उनपे नमक लगाने के प्रॉपर कमरे मिले हैं।
घर के अंदर फैक्ट्री।
एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि जब पीटर या ज़ेबेदी जैसे लोग समंदर से मछली पकड़कर लाते थे तो घर की महिलाएं और बच्चे उसी फैक्ट्री फ्लोर पर काम करके उस फिश को प्रोसेस करते थे।
वाओ, तो बेसिकली उस दौर में घर का मतलब रोमांटिक प्यार या आराम करना था ही नहीं, एक यूनिट को चलाना था। इसीलिए शादियां भी रोमांटिक नहीं होती थी, राइट? वो एक जॉइंट वेंचर या बिजनेस समझौता जैसी थी। तोबिट को ही ले लीजिए, वो मानते थे कि अपनी ही ट्राइब के बाहर शादी करना बेसिकली पाप जैसा है,
क्योंकि ट्राइब के बाहर शादी करने का मतलब था अपनी फैमिली फैक्ट्री के रिसोर्सेज किसी आउटसाइडर को दे देना। और इसी तरह डिवोर्स के रूल्स भी इस इकोनॉमी के हिसाब से सेट थे।
डिवोर्स के क्या रूल्स थे?
जूडिया और ज्यूइश समाज में ज्यादातर सिर्फ मर्द डिवोर्स इनिशिएट कर सकते थे, लेकिन रोमन और ग्रीक टेरिटरीज में औरत भी डिवोर्स ले सकती थी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपनी डाउरी यानी दहेज वापस अपने मायके ले जा सकती थी।
तो वहाँ औरत को थोड़ी फाइनेंशियल प्रोटेक्शन थी। चलो यहाँ तक तो समझ आया कि फैक्ट्री का हेड कौन था और मर्जर्स कैसे होते थे। पर अब उन लोगों की बात करते हैं जो इस क्रमव्यवस्था में बॉटम पर थे, महिलाएं, बच्चे और स्लेव्स।
महिलाओं का स्टेटस उस दौर में सच में बड़ा विरोधाभासी था। हिस्टोरियन जोसेफस साफ लिखते थे कि औरतें मर्दों से हर चीज में इन्फीरियर है, नीची हैं। लेकिन किसी भी प्राचीन लेखक ने महिलाओं को संपत्ति या प्रॉपर्टी नहीं कहा।
ये एक मॉडर्न गलतफहमी है।
हाँ, संपत्ति नहीं थी पर अधिकार भी नहीं थे उनके पास।
संपत्ति नहीं थी पर आजाद भी तो नहीं थी। प्लूटार्क ने एक मेटाफर यूज किया था जो मुझे बड़ा अजीब लगा। उन्होंने हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को म्यूजिक से कंपेयर किया। उन्होंने लिखा कि प्राचीन काल के संगीत में जो बैकग्राउंड की लो पिच धुन होती थी, उसके साथ एक हाई पिच नोट प्ले किया जाता था सिर्फ उसको सपोर्ट करने के लिए।
और उन्होंने पत्नी को हाई पिच नोट कहा।
हाँ, बीवी हाई पिच थी जो सुनाई तो देती थी, पर लीड हमेशा हस्बैंड यानी लोअर नोट ही करेगा। पत्नी का मुख्य गुण सिर्फ हामी भरना था।
और उस हार्मनी को मेंटेन करने के लिए औरतों से मुख्य रूप से तीन चीजें एक्सपेक्ट की जाती थी, साइलेंस, सिक्लूजन और चेस्टिटी।
चुप रहना, बंद कमरे में रहना और पवित्रता।
एकदम। फाइलो, जो फर्स्ट सेंचुरी के एक ज्यूइश फिलोसोफर थे, उन्होंने यहाँ तक लिखा कि एक कुवारी लड़की की बाउंड्री उसके घर का भीतरी कमरा है और शादीशुदा महिला की लिमिट उसके घर का मेन दरवाजा।
बट ऐसा क्यों था? अगर घर एक प्रोडक्शन यूनिट था जहां सब लगातार काम कर रहे थे, तो औरतों को चार दीवारी में बंद रखने का क्या लॉजिक बनता था?
इसका सीधा लॉजिक रिसोर्सेज और खून की प्योरिटी से जुड़ा था। लिमिटेड गुड्स वाली उस इकोनॉमी में एक मर्द ये इंश्योर करना चाहता था कि उसकी जमीन और उसकी फैक्ट्री का वारिस 100% उसी का अपना खून हो।
पैटर्निटी की गारंटी।
हाँ, चैसिटी और सिक्लूजन का सारा जोर सिर्फ एक लेजिटिमेट हेयर की गारंटी के लिए था।
आई गेट इट नाउ। सर्वाइवल ऑफ द ब्लड लाइन। और बच्चों की एजुकेशन का क्या सीन था उस वक्त?
बच्चों पर पिता का पूरा अधिकार था। अमीर ग्रीक और रोमन घरों में बच्चों के पीछे एक खास गुलाम लगा दिया जाता था जिसे पेडागॉग कहते थे, जिससे हमारा मॉडर्न शब्द पेडागॉजी आया है।
वेट, पेडागॉग मतलब टीचर?
नहीं, लोग आज यही सोचते हैं, पर पेडागॉग असली टीचर नहीं था। उसको बस अनुशासन के लिए रखा जाता था, ये देखना कि उसने कपड़े ठीक पहने हैं, होमवर्क किया है, ताकि जब वो असली शिक्षक के पास बाहर जिम्नेजियम में जाए तो रेडी हो।
एक डिसिप्लिन इंचार्ज। और यहूदियों में?
यहूदियों में फिलॉसफी थोड़ी अलग थी। वहाँ ड्यूटरोनॉमी के रूल्स के मुताबिक बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना माता पिता का, स्पेशली पिता का हर्ज था।
चलो अब आते हैं उस तबके पर जिसके बिना ये एंशियंट सोसाइटी एक दिन नहीं चल सकती थी, गुलाम यानी स्लेव्स। सोर्सेस पढ़कर मुझे तो शॉक लगा कि प्राचीन काल में हर पांचवें में से एक और कभी कभी हर तीन में से एक शख्स गुलाम था। युद्धार ना, उधार ना चुका पाना, इन सब का नतीजा गुलामी था। और सबसे ब्रूटली एरिस्टोटल इन्हें लिविंग टूल्स कहता था।
जिंदा औजार?
हाँ, एक जिंदा हथौड़ा जिसमें बस आवाज थी।
ये ह्यूमन हिस्ट्री का बहुत डार्क फेस था, जहाँ लोगों को इंसान कम मशीन ज्यादा समझा जाता था। पर इसी सिस्टम में एक बड़ा सामाजिक विरोधाभास है जो काफी हैरान कर देता है।
मैं वही पूछने वाला था। मैं चाहता हूँ आप इस कॉन्ट्रडिक्शन को थोड़ा डिटेल में समझाएं, क्योंकि मुझे सीरियसली कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा। एक तरफ आप बोल रहे हो गुलाम सिर्फ एक हथौड़ा है, पर दूसरी तरफ सोर्सेस कहते हैं कि एम्परर के महलों में जो गुलाम होते थे वो इतने अमीर और ताकतवर हो जाते थे कि प्रोविंशियल गवर्नर्स भी उनसे डरते थे।
सुनने में अजीब लगता है ना?
बहुत अजीब। एफेसिस के साउथ गेट को ऐसे ही दो आजाद किए गए गुलामों ने बनवाया था। मतलब हाउ इज दैट पॉसिबल? एक गुलाम गवर्नर से ज्यादा पावरफुल और अमीर कैसे हो गया?
इसका पूरा लॉजिक बोरोड अथॉरिटी में था। देखिए, एक गुलाम की अपनी कोई आइडेंटिटी तो होती नहीं थी। उसकी सारी आइडेंटिटी उसके मास्टर से आती थी। अगर आपका मास्टर एक साधारण किसान है तो सोसाइटी में आपकी कोई औकात नहीं। लेकिन अगर आपका मास्टर रोम का सम्राट है
तो आप प्रैक्टिकली सम्राट के शैडो बन गए।
तो गवर्नर को यही लगता था कि सीधा एम्परर उससे बात कर रहा है।
उनका अपना कोई अस्तित्व नहीं था, पर एम्परर की ताकत का रिफ्लेक्शन बनकर वो सोसाइटी में टॉप पोजीशन पर बैठ जाते थे।
ये सामाजिक ढांचा अधिकारों पर नहीं बल्कि पावर स्ट्रक्चर्स, ड्यूटी और पैट्रनेज पर चलता था। जिसके पास जितना पावरफुल संरक्षक, उसकी उतनी बड़ी पोजीशन।
तो एक ऐसी दुनिया जहां पावर हाया की इतनी ब्रूटल थी, खून का रिश्ता ही आपका पासपोर्ट था, और अपनों और गैरों के मॉरल रूल जमीन आसमान का फर्क रखते थे, इस सेटअप को किसी ने नेचुरली चैलेंज नहीं किया?
किया था, और वहीं से शुरू होती है पहली सदी की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति, जिसने इस पूरे बायोलॉजिकल फैमिली और ब्लडलाइन के ढांचे को जड़ से हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं फिक्टिव किनशिप, यानी वैचारिक रिश्तेदारी की,
जिसके बीज अलेक्जेंड्रिया के एक ज्यूइश राइटर फाइलो के विचारों में देखे गए थे ना?
हाँ, फाइलो का मानना था कि असली रिश्तेदारी सिर्फ खून या पूर्वजों से नहीं, बल्कि एक जैसे लक्ष्यों और एक जैसे आचरण से तय होती है।
और इसी थॉट को अर्ली क्रिश्चियनिटी ने एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया।
बिल्कुल, जीसस ने खुलेआम कहा कि जो अपने खून के रिश्तों को, यानी माता पिता भाई को छोड़ेगा, उसे एक नया धार्मिक परिवार मिलेगा। उस स्ट्रिक्टली डिवाइडेड सोसाइटी में इमेजिन कीजिए, एक अमीर ग्रीक व्यक्ति, एक पुअर ज्यूइश किसान और एक एक्सलेव, तीनों एक दूसरे को अपना भाई और बहन बुला रहे।
ये प्रैक्टिकली एक बम फोड़ने जैसा था उस टाइम। फिक्टिव किनशिप सिर्फ एक प्यारा सा टाइटल नहीं था उनके लिए, इसका मतलब था कि आपको अपना बैंक अकाउंट, अपने खेत और अपने लिमिटेड रिसोर्सेज अनजान लोगों के साथ शेयर करने थे जिनसे आपका खून का कोई रिश्ता ही नहीं था।
ये अनलिमिटेड गुड्स इकोनॉमी वालों के लिए सोचना भी नामुमकिन था कि कोई आउटसाइडर उनके रिसोर्सेज का हिस्सेदार बन सकता है।
फर्स्ट पीटर की किताब में इसी ढांचे को चर्च का मुख्य रूपक बनाया गया था। उन्होंने उस एंशियंट फैमिली स्ट्रक्चर के सबसे अच्छे गुण, जैसे ट्रस्ट, एकता और डिसेप्शन का ना होना, उन्हें उठाया और उसे एक नई कम्युनिटी पर अप्लाई कर दिया, जहां ब्लडलाइन की रिक्वायरमेंट पूरी तरह खत्म कर दी।
इसने प्राचीन बायोलॉजिकल परिवार के कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल दिया।
सो टू रैप इट अप, फर्स्ट सेंचुरी में परिवार का मतलब सिर्फ फीलिंग्स नहीं था, वंश ही सब कुछ था। घर एक छोटी फैक्ट्री के समान थे और आपसी रिश्तों के नियम अपनों और गैरों के लिए अलग अलग थे। और इन सारे सदियों पुरानी दीवारों को उस वक्त एक नया आइडिया, यानी वैचारिक रिश्तेदारी ने तोड़ दिया। व्हाट अ जर्नी।
वक्त के साथ समाज बदला, नियम बदले, पर एंशिएंट ढांचे ने इंसानी रिश्तों को कैसे आकार दिया, ये समझना सच में दिलचस्प है।
सही में। और इस एनालिसिस को समाप्त करते हुए एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए, जिस पर अकेले में सोचा जा सके। आज की आधुनिक दुनिया में हम मानते हैं कि हम पहली सदी से बहुत आगे निकल आए हैं, पर जरा सोचें, आज लोग इंटरनेट पर कम्युनिटीज बनाते हैं, ऑनलाइन दोस्ती करते हैं या अपना चोजन फैमिली बनाते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें अपने खून के रिश्तों में समझ या प्यार नहीं मिलता।
बहुत लोग ऐसा करते हैं आजकल।
तो क्या हम दरअसल किसी नई आधुनिक दिशा में जा रहे हैं, या हम अनजाने में वापस उसी 2000 साल पुरानी फिक्टिव किनशिप के मॉडल की तरफ लौट रहे हैं, जिसने पहली सदी के उस तनाव भरे माहौल में लोगों को एक दूसरे से जोड़ा था? क्या सच्चा परिवार खून से बनता है या एक जैसे इरादों से? इस बारे में जरूर सोचो।